Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharvavediya Brahman Bhakti Prashnopanishad ka vichara hum log kar rahe hain. Prashnopanishad की आख्यायिका के अनुसार आचार्य कबंदी के आचार्य पिपलाद जी के आज्ञानुसार उनके आश्रम में सुकेश आदि छह ऋषियों ने निवास किया, तप ब्रह्मचर्य तथा श्रद्धा से एक वर्ष तक। एक वर्ष के पश्चात आचार्य पिपलाद जी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके सुकेश आदि छह ऋषियों में से कबंधी नाम के ऋषि ने प्रश्न किया कि यह 84 लाख प्रकार की प्रजा किससे उत्पन्न होती है। प्रजा का उत्पादक कौन है? यह जो ऋषि कबंधी का प्रश्न है, इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं चतुर्थ कंडिका से आचार्य पिपलाद जी। आचार्य पिपलाद जी कबंधी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इस कल्प में जो प्रजापति के रूप में यानी हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ है, पूर्व कल्प में हम जैसा ही जो मनुष्य था और वेदों ने बताए हुए हिरण्यगर्भ बनने की जो साधना है उसका अनुष्ठान किया जिस मनुष्य ने, और वह साधना उसकी पूरी हुई, वेदों ने हिरण्यगर्भ बनने की साधना बताई है, अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हुए हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना जो मनुष्य करता है, इसे कहा जाता है कर्म समुचित उपासना। कर्म भी कर रहा है और हिरण्यगर्भ की उपासना भी कर रहा है। उपासना दो प्रकार की है, एक भेदोपासना, दूसरी अभेद उपासना। तो यहां हिरण्यगर्भ बनने के लिए हिरण्यगर्भ की भेदोपासना नहीं अभेद उपासना करनी होती है, यानी हिरण्यगर्भ का वेदों ने जैसा स्वरूप बताया ऐसा पहले वेदों से समझना पड़ता है और उस स्वरूप को वेदानुसार समझ करके बुद्धि में सुनिश्चित करना होता है कि हिरण्यगर्भ ऐसा ऐसा है। और फिर अपनी अहंता जो उपासना के पहले एक मनुष्य शरीर में मात्र सीमित है, तो उस मनुष्य शरीर से निकाल करके वेदों ने हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप बताया है उसमें स्थापित करना होता है। अहंग्रह उपासना का स्वरूप यही होता है कि आप जिसकी अहंग्रह उपासना कर रहे हैं, मैं के रूप से उपासना कर रहे हैं, पहले उसका शास्त्र ने बताया हुआ स्वरूप अपने बुद्धि में सुनिश्चित कर लें और फिर अपनी अहंता को स्वभावतः जहां पर है वहां से निकाल करके प्रयत्न करते रहे कि अहंता का विषय हम जिसे अपना उपास्य समझे हैं उसे बना ले, अपनी अहंता का वो आलंबन बने। जैसे वेद ज्ञान में निधिध्यासन होता है, तत्त्वमसी वाक्यार्थ को समझ करके ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला निधिध्यासन करता है का अर्थ होता है अपने समस्त उपाधि से अहंता को निकाल करके जो शोधित तदर्थ है उसे अपनी अहंता का आलंबन बनाता है, तो निधिध्यासन माना जाता है। निरुपाधिक ब्रह्म की अहंग्रह उपासना जैसी है वो, और यहां तो सोपाधिक ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, और उसे शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा समझ करके अपनी अहंता का आलंबन बनाते 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 ये अभ्यास तब तक करना होता है, अंग्र उपासना पूर्ण हो गई ये तब मानी जाती है। जिसकी अहंग्र उपासना हम कर रहे हैं वही हम हैं, ये हमारा निश्चय हो जाए सहज। इस समय जैसे निश्चय होता है कि हम मनुष्य हैं, मुंबईकर हैं, प्रेमपुरी आश्रम के सत्संगी हैं, ऐसा अपनी अहंता का आलंबन ये उपाधि को बना करके इस उपाधि की जो जो विशेषता है उन विशेषताओं वाला अपने आप को समझते हैं। इतना अनायास सहज स्वाभाविक अपनी अहंता का आलंबन वो बने हिरण्यगर्भ का स्वरूप, जिसमें शास्त्र ने हिरण्यगर्भ की सारी विशेषताएं बताई है वैसा। तो माना जाता है हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना परिपूर्ण हो गई। जिसकी अहंग्र उपासना कर रहे हैं वह उपासक को मैं के रूप में वैसा अनुभव में आ जाए जैसा शरीर आता है, बिना याद किए ही मैं के रूप में वही स्मरण में आ जाए, तो अहंग्र उपासना का परिपाक हो गया ये माना जाता है। तो ऐसी अहंग्र उपासना पूर्वकल्प में जिस साधक की पूर्ण हो गई, लेकिन पूर्वकल्प के हिरण्यगर्भ की आयु, जो पूर्वकल्प में हिरण्यगर्भ था उसका उपास्य, उसकी आयु पूरी हो गई, तो फिर जातस्य ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो हिरण्यगर्भ का भी जन्म हुआ है, संसार में सबसे प्रथम सदस्य के रूप में यदि कोई आता है तो हिरण्यगर्भ आते हैं, ईश्वर की प्रथम संतान है। हाँ, वैदिक ब्रह्मा। हाँ, इस संसार का प्रथम प्रथम सदस्य कौन है? हिरण्यगर्भ। और अंतिम सदस्य भी वही है। वो चले जाते हैं तो फिर संसार नहीं रहता, उनकी आयु तक ही संसार है। तो उनकी आयु समाप्त होने के बाद वे तो मुक्त हो जाते हैं, उन्हें तो ज्ञान हो जाता है निर्विशेष ब्रह्म का, इसलिए उनका भावी जन्म नहीं होता दूसरे कल्प में, वो अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होंगे और उनके साथ उनके लोक में पहुंचे हुए जो जो जिज्ञासु हैं उन्हें भी निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान जिनको जिनको होगा वे मुक्त हो जाते हैं। जो मुक्त हो जाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होंगे, उनका दूसरे कल्प में जन्म नहीं होगा। और जो हिरण्यगर्भ लोक में पहुंच ही नहीं पाए और पहले ही हिरण्यगर्भ की आयु समाप्त हो गई, तो मृत्यु लोक में रहते रहते ही उनके महाप्रलय हो जाएगा। तो उपासक का भी ऐसा ही हुआ, वो शरीर छूट गया उसका हिरण्यगर्भ की आयु पूरी होने के बाद, लेकिन उसने साधना जो की थी उसका फल तो मिला नहीं, और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ तो मुक्त भी नहीं होगा। तो फिर जब तक महाप्रलय है तब तक गुणत्रय की साम्यावस्था रूप जो प्रकृति है, उस प्रकृति में संस्कारात्मना सारे जीव जितने भी अज्ञानी थे वे अवस्थित रहेंगे। जैसे हरेक ऋतु में पृथ्वी में उगने वाले जो पौधे हैं उनके बीज अतिरिक्त ऋतु में पृथ्वी में पड़े रहते हैं, जब उनका समय आता है तब वो पृथ्वी में पड़ा हुआ जो बीज है वह अंकुरित होता है। ऐसे प्रलय के समय पूर्वकल्प का प्रलय हुआ और जिसके जितने जैसे कर्म थे उन सब कर्मों के साथ और उपासनादि के साथ सारे जीव बीज रूप से, संस्कार रूप से वह प्रकृति में अवस्थित रहते हैं। और जब प्रलय का समय समाप्त होता है और भावी कल्प के उत्पत्ति का समय आता है, उस समय फिर भगवान संकल्प करते हैं, एको अहम बहुश्याम प्रजायेय, और ये संकल्प करके भगवान सत्य संकल्प होने के कारण भगवान के पास तो और कोई रॉ मटेरियल नहीं है कि ये 14 भुवनात्मक एक टावर खड़ा करने के लिए, न सरिया है, न बजरी है, न रेता है, न सीमेंट है। वो केवल आर्किटेक्ट है, लेकिन ऐसा आर्किटेक्ट है, डिजाइनर है, कि वो संकल्प करता है, सत्य संकल्प है ना, तो संकल्प करने मात्र से ही, उनका डिजाइन बनने से ही साथ साथ वो भवन खड़ा हो जाता है, ब्रह्मांड। ऐसे है वो सत्य संकल्प, तो बिना कच्चे माल के ही संसार को बना देते हैं वो, पांच भूत सूक्ष्म उत्पन्न कर देते हैं। सूक्ष्म पांच भूतों से समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीरों को भी बना देते हैं, और फिर समष्टि शरीर जैसा ही बना तो वही पूर्व कल्प का जो अहंग्रह उपासक था वह ईश्वर के द्वारा अपने सत्य संकल्प से निर्मित अपंचीकृत पंच महाभूतों से जो समष्टि शरीर है उसमें अहंता कर लेता है। कौन अहंता करेगा? जो उपासक पूर्वकल्प में उपासना पूर्ण होने के पश्चात प्रकृति में विलीन हुआ था, उस उपासना का फल भोग नहीं पाया था। हिरण्यगर्भ बनने के लिए उपासना की थी लेकिन सृष्टि का समय समाप्त होने से विलीन हुआ, उसको प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया था। अब वो समय आ गया है और वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ को भगवान अपने संकल्प से उत्पन्न कर देते हैं। इसे यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं इस मंत्र में कहा है कि जो परमात्मा ब्रह्मा को यानी हिरण्यगर्भ को सबसे पहले उत्पन्न कर देते हैं। उत्पन्न करने के बाद भगवान की संतान है पिता को पुत्र से अपेक्षा होती है कि जो उसका कारोबार है वह ठीक ठीक चला ले। ऐसे तो अच्छा है पिता से पुत्र सवासेर हो जाए, उसे आगे बढ़ा दे, तो पिता को और अधिक प्रसन्नता होती है। नहीं तो कम से कम जो पिता ने बना करके रखा हुआ है उसे सुरक्षित रखें, उसे ठीक ठीक चला लें। तो ईश्वर की प्रथम संतान है, अकेले पुत्र है हिरण्यगर्भ, तो उन ईश्वर को भी उनसे अपेक्षा है। उनका जो संकल्प है, उनका क्या संकल्प है कि बहुश्याम यानी अनेक हो जाऊं। अभी सृष्टि का समय होने से वो चाहते हैं विस्तार हो जाए, काफी मात्रा में बढ़े, ये उनका संकल्प है। तो हिरण्यगर्भ को बता देते हैं कि ये मेरा संकल्प था और इस संकल्प को साकार करने के लिए मेरे तुम्हें मैंने ये रॉ मटेरियल दे दिया है, अपंचकृत पंच महाभूत कच्चा माल है, और इससे तुम संसार को प्रकट करो, उत्पन्न करो, तो मेरे योग्य पुत्र माने जाओगे। ये कह करके और कहा कि वो विधि मैं सब बता देता हूं, इसलिए यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै, हिरण्यगर्भ को उत्पन्न कर देते हैं और पांचों भूत रूपी कच्चा माल दे देते हैं, और वह कैसे संसार को बनाना है यह वर्णन है, जिसमें ऐसा वेद भी प्रदान कर देते हैं। कहते ये संविधान है, इस संविधान के अनुसार तुम संसार को बना करके, साम्राज्य को बना करके चला लो एक कल्प तक, अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो हिरण्यगर्भ ईश्वर की योग्य संतान होने के नाते वे क्या करते हैं कि प्रजा का निर्माण करते हैं। इसलिए यहां पर प्रजा कामो वही प्रजापति ही, ये 4वें मंत्र में लिखा है, प्रजापति का एक विशेषण दिया कि प्रजा काम है। प्रजा काम का अर्थ है प्रजा बनाने की इच्छा वाले, और उनको प्रजा को बनाने की इच्छा क्यों हुई कि जब मनुष्य थे और वेद का अध्ययन किया था और वेद ने वर्णन किया था कि हिरण्यगर्भ ही सारे संसार को बनाते हैं, सारे संसार को चलाते हैं, सारे संसार को एक कल्प तक जब तक चंद्रमा सूर्य रहेंगे तब तक स्वतंत्र रूप से भोगते हैं साम्राज्य उसका संसार का, और ऐसा सुना तो उनके तरह बनने की इच्छा हुई थी, जैसा वो करते हैं ऐसा ही करने की भी इच्छा उस समय ही हुई थी, और उसी इच्छा से तो मैं भी जैसा हिरण्यगर्भ इस कल्प का ऐसा बनूं, इस इच्छा से प्रेरित होकर के अहंग्रह उपासना की थी ना, इसलिए इस कल्प में फिर भगवान ने उस साधना का फल दे दिया है, हिरण्यगर्भ बना दिया है। हिरण्यगर्भ बना करके फिर कहा कि अब बना लो, तो बनाते हैं, पहले सबसे पहले पंचीकरण कर लेते हैं, जो अपंचकृत पंच महाभूत रूपी कच्चा माल भगवान ने दिया था उसमें से पांचों भूतों को दो दो विभागों में विभक्त कर देते हैं, और फिर जो दो दो विभाग हुए पांचों भूतों के उसमें से एक विभाग को तो सुरक्षित रखते हैं जैसा का तैसा, और दूसरे भाग के फिर चार चार बराबर हिस्से कर लेते हैं। और ये जो आकाश का एक भाग पूरा का पूरा वैसा ही रखा था आधा 50%, उसमें वायु के दूसरे भाग का जो चार हिस्सा किए थे ना, यानी 12.5%, 12.5% ऐसे चार हिस्से 50% के करेंगे, 50 के तो 12.5% होंगे। तो आकाश के 50% भाग में वायु का 12.5% जो हिस्सा है वो मिला लेते हैं, और फिर अग्नि का भी, जल का भी और पृथ्वी का भी 12.5% मिल जाएगा। तो 12.5×4=50 और आकाश का 50 मिलकर के 100% हो जाता है वो आकाश। लेकिन बाकी 4 के 50% में शेर है, और 50% शेर है स्थूल आकाश में आकाश के, इसलिए वो स्थूल आकाश कहलाता है। सूक्ष्म आकाश तो 100% आकाशी आकाश है, उसमें कुछ व्यवहार नहीं हो सकता, उसमें विमान आदि नहीं उड़ सकता, उसमें आना जाना ये सब नहीं होता, वे अव्यवहार्य हैं। स्थूल जगत का व्यवहार स्थूल भूतों से होता है, स्थूल आकाश में होता है। तो ऐसे ही वायु का जो 50% भाग था आधा, उसमें बाकी 4 भूतों का, आकाश का 12.5% तो वायु, अग्नि, जल, तेज का मिलकर के वो स्थूल वायु हो जाता है, वही आपको ऑक्सीजन आदि दिला सकता है, और उसी से आपको ठंडी गर्म हवा मिल जाती है। सूक्ष्म वायु आपके उपयोग का नहीं है, यानी हिरण्यगर्भ स्थूल संसार बनाते, यानी आपके पहले तो आपके शरीरों को बनाते और शरीर उपयोगी ये सब पदार्थों को भी बना लेते हैं। तो भगवान ने सूक्ष्म भूत दिए थे, लेकिन सीधे सीधे सूक्ष्म भूत से स्थूल शरीर नहीं बन सकते, इसलिए क्या किया कि स्थूल भूत बनने योग्य सूक्ष्म भूतों को बनाया, वो इसके लिए स्थूल बना दिया उनको पंचीकरण प्रक्रिया से, 5 भूत इस प्रकार स्थूल हो गए। और तो स्थूल 5 भूतों का ही नाम है ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड हुआ, जब स्थूल 5 भूत बन गए तो ब्रह्मांड हो गया। फिर उन्होंने ब्रह्मांड एक गोलाकार है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है ऐसे ही अंडाकार है, और उसमें वो अंडा 1 वर्ष तक वैसा ही रहा ऐसा कहा जाता है, और बाद में उसे फोड़ा, कुछ समय तक वो वैसा ही रहा, और जैसे ही फूटा वह ब्रह्मांड, तो उससे अन्न और अत्ता ये जोड़ा प्रकट हुआ मिथुन। अन्न है चंद्रमा और अत्ता है सूर्य, सूर्य चंद्रमा को प्रकट किया। जैसे स्थूल भूत हुए यानी ब्रह्मांड बना, फिर ब्रह्मांड फूटा, उससे संवत्सर के निर्वर्तक चंद्र और सूर्य प्रकट हुए, ये दो इसको मिथुन कहा गया, ये एक जोड़ा उत्पन्न किया। ये लिखते हैं कि जोड़ा उत्पन्न करने से पहले हिरण्यगर्भ ने क्या किया, तो स तपो अतप्यत और स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयते। तो मिथुन उत्पन्न करने से पहले उन्होंने तपस्या की, तप किया। वो तप है पूर्व कल्प में उपासना हिरण्यगर्भ की प्रारंभ करते समय हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप वेदों के अनुसार जाना था और हिरण्यगर्भ की विशेषताएं भी जानी थी, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं सब, वो जो संस्कार पूर्वकल्प में पड़े थे बुद्धि में, उन संस्कारों को बुद्धि में अभिव्यक्त किया। पहले से अनुभूत पदार्थ को कभी याद करना हो तो व्यक्ति चिंतन करता है ना, और चिंतन से फिर संस्कार जैसे प्रकट होते हैं तो याद आ जाती है फलानी वस्तु फलानी जगह ऐसा है करके। ऐसे पूर्वकल्पीय संस्कारों को उन्होंने चिंतन से अभिव्यक्त किया और फिर हिरण्यगर्भ का सर्जन किस प्रकार का होता है ये याद किया, स्मरण किया। यही तपना है, तपस्या करना है।